ईरान इसराइल युद्धविराम प्रस्ताव। मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, जो गाजा ईरान और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में हिंसा और पीड़ा से चिन्हित है, शांति बहाल करने और न्याय कायम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग करता है। यह निबंध एक युद्धविराम प्रस्ताव प्रस्तुत करता है जो शिया कानूनी अवधारणाओं दरूरा आवश्यकता नियत अल खैर नेक नियत और अमानह विश्वसनीयता का आह्वान करते हुए ईरान की डी एस्केलेशन की मंशा को दर्शाने वाली शर्तों को व्यक्त करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पहले मुझे स्पष्टता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण देना होगा। 1. मैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से संबद्ध नहीं हूं और न ही उसके नाम पर कार्य करने के लिए अधिकृत हूं। 2. ईरान ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह इस समय इसराइल के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वार्ता की मांग नहीं करता। 3. आवश्यकता के कारण और उपरोक्त शिया कानूनी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, मैं इस युद्धविराम प्रस्ताव को ईरान के घोषित उद्देश्यों और क्षेत्र में शांति और न्याय की व्यापक खोज के साथ संरेखित शर्तों को प्रस्तावित करने के लिए एक नेक नियत के प्रयास के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। यह निबंध एक व्यापक युद्धविराम प्रस्ताव को रेखांकित करता है जिसमें विशिष्ट शर्तों का विवरण दिया गया है जो संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करते हैं, जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं और एक न्यायपूर्ण समाधान का मार्ग प्रशस्त करते हैं। युद्धविराम प्रस्ताव। निम्नलिखित शर्तें तत्काल शत्रुता की समाप्ति प्राप्त करने और स्थायी शांति के लिए एक ढांचा स्थापित करने के लिए प्रस्तावित हैं। 1. ईरान पर हमलों की समाप्ति, इसराइल को तत्काल सभी सैन्य अभियान जिसमें हवाई हमले साइबर हमले और गुप्त कार्रवाइयां शामिल हैं जो ईरानी क्षेत्र बुनियादी ढांचे या कर्मियों को लक्षित करते हैं को रोकना होगा। यह डी एस्केलेशन के लिए एक मूलभूत शर्त है क्योंकि निरंतर आक्रामकता वार्ता की संभावना को कमजोर करती है और क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देती है। 2. गाजा पर हमलों की समाप्ति, इसराइल को गाजा में सभी सैन्य अभियान जिसमें हवाई हमले जमीनी घुसपैठ और मानवीय संकट को बढ़ाने वाले नाकाबंदी शामिल हैं को रोकना होगा। गाजा में हिंसा की समाप्ति नागरिकों की पीड़ा को कम करने और मानवीय राहत और पुनर्निर्माण के लिए परिस्थितियां बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। 3. परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार, इसराइल को परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के तहत परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। इसराइल की परमाणु क्षमताओं के बारे में पारदर्शिता विश्वास निर्माण और क्षेत्रीय हथियारों की दौड़ के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक है जो वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डालता है। 4. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की अधिकारिता स्वीकार करना, इसराइल को रोम संयम पर हस्ताक्षर करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी की प्राधिकार और अधिकारिता को स्वीकार करना होगा। यह कदम युद्ध अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघनों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है जो न्याय की संस्कृति को बढ़ावा देता है और भविष्य की अत्याचारों को रोकता है। 5. संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों और आईसीजे आदेशों का पूर्ण अनुपालन, इसराइल को सभी प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के आदेशों का पालन करना होगा, विशेष रूप से कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों से संबंधित। इसमें निम्नलिखित विशिष्ट कार्रवाइयां शामिल हैं। 1. गाजा की नाकाबंदी तत्काल हटाना, इसराइल को गाजा पर नाकाबंदी हटानी होगी और मानवीय सहायता जिसमें भोजन दवाइयां और पुनर्निर्माण सामग्री शामिल हैं के लिए बीरोकटोक पहुंच की अनुमति देनी होगी। चल रही नाकाबंदी ने अपार पीड़ा उत्पन्न की है और मानवीय आपदा को संबोधित करने के लिए इसे समाप्त करना होगा। 2. अवैध बस्तियों की समाप्ति और निकासी, इसराइल को कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में सभी बस्ती गतिविधियों को रोकना होगा और वैध बस्तियों को खाली करना होगा। ये बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती हैं और एक व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य की संभावना को बाधित करती हैं। 3. कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों से वापसी, इसराइल को संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के अनुसार फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय और संप्रभुता का सम्मान करने के लिए कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों से अपनी सेनाओं और प्रशासनिक उपस्थिति को वापस लेना होगा। 4. नरसंहार की रोकथाम और सजा, इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा परिभाषित नरसंहार की उकसावे और नरसंहार के कृत्यों को रोकने और दंडित करने के लिए ठोस उपाय करने होंगे। इसमें भड़काऊ बयानबाजी को संबोधित करना और हिंसा के अपराधियों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल है। 5. यरूशलम के विलय को रद्द करना, इसराइल को यरूशलम के विलय और इसे अपनी राजधानी के रूप में नामित करने को रद्द करना होगा। यरूशलम के विशेष दर्जे को कोर सेपरेटम के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मान्यता देनी होगी। यह कदम यरूशलम के अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को संरक्षित करने और इसके अंतिम दर्जे के लिए एक बातचीत आधारित समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। तर्क और संदर्भ। यह प्रस्ताव दरूरा, नियत अल खैर और अमानह के सिद्धांतों पर आधारित है, जो आवश्यकता से नेक नियत के साथ और विश्वसनीयता की भावना में की गई कार्रवाइयों को मार्गदर्शन करते हैं। इन शिया कानूनी अवधारणाओं का आह्वान शांति की ओर एक मार्ग प्रस्तावित करने की नैतिक अनिवार्यता को रेखांकित करता है, भले ही ईरान से औपचारिक प्राधिकार न हो। इसराइल के ईरान, गाजा और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों के खिलाफ कार्रवाइयों को संबोधित करके प्रस्ताव क्षेत्र में संघर्ष के परस्पर जुड़े चालकों को निपटाने की कोशिश करता है। इसराइल से एनपीटी पर हस्ताक्षर करने और परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग ईरान की क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दर्शाती है। इसी तरह आईसीसी की अधिकारिता और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के अनुपालन की मांग का उद्देश्य जवाबदेही स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना है, जिसे ईरान ने विवादों को हल करने के आधार के रूप में बार बार जोर दिया है। गाजा और कब्जे वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान ईरान के फिलिस्तीनी अधिकारों के लिए समर्थन और इन क्षेत्रों में इसराइल की नीतियों की निंदा के साथ संरेखित है। चुनौतियां और विचार। हालांकि यह प्रस्ताव नेक नियत के साथ पेश किया गया है, इसके कार्यान्वयन को महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसराइल के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वार्ता में शामिल होने से ईरान का इनकार बातचीत की प्रक्रिया को जटिल बनाता है, जिसके लिए तटस्थ अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं द्वारा तृतीय पक्ष मध्यस्थता की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का पालन करने, एनपीटी पर हस्ताक्षर करने या आईसीसी की अधिकारिता को स्वीकार करने में इसराइल की ऐतिहासिक अनिच्छा इन शर्तों को लागू करने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय दबाव की आवश्यकता को और अधिक रेखांकित करती है। इसके अतिरिक्त यरूशलेम की स्थिति का संवेदनशील मुद्दा इसके अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का सम्मान करते हुए प्रतिस्पर्धी दावों को संतुलित करने के लिए सावधानीपूर्वक कूटनीति की मांग करता है। इन चुनौतियों के बावजूद प्रस्ताव डी एस्केलेशन और न्याय के लिए एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करता है। यह मानवीय पीड़ा को कम करने के लिए तत्काल कदम, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएं और संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन की मांग करता है। निष्कर्ष। ज़रूरा, नियत अल खैर और अमानह की भावना में यह युद्धविराम प्रस्ताव इसराइल, ईरान और फिलिस्तीन के बीच हिंसा को बढ़ावा देने वाले मूल मुद्दों को संबोधित करके शांति का एक मार्ग प्रदान करता है। ईरान और गाजा पर हमलों को समाप्त करने, परमाणु निरस्त्रीकरण, आईसीसी जवाबदेही और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के अनुपालन की मांग करके प्रस्ताव एक न्यायपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए परिस्थितियां बनाने की कोशिश करता है। हालांकि मैं न तो ईरान से संबद्ध हूँ और न ही उसके द्वारा अधिकृत, यह प्रयास ईरान की मंशा और शांति की व्यापक खोज के साथ संरेखित शर्तों को व्यक्त करने का एक नेक नियत का प्रयास दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब तत्कालता के साथ कार्य करना होगा ताकि वार्ता को सुगम बनाया जाए, जवाबदेही लागू की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि मध्य पूर्व में न्याय और मानवता के सिद्धांत प्रबल हों।